15 अक्टूबर दिन मंगलवार दिन भर मैं हूं रेहान फदल। श्रीनगर में आर्टिकल 370 को हटाए जाने के खिलाफ महिलाओं का प्रदर्शन। पुलिस ने दावा किया मुर्शिदाबाद हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने का।
बीजेपी अब सीबीआई की मांग करे, वो एक आदमी को पकड़ा गया है, एक आदमी कैसे तीन आदमी को मार सकता है।
बात करेंगे महाराष्ट्र के आदिवासी इलाकों में धर्म परिवर्तन से होने वाले तनाव पर।
हमारा जो पहले से चल रहा है आदिवासी समाज का, वो नियम से तुम चलो नहीं करके हम थोड़ा सा उनको अटाव कर दिए, तेल हल्दी नहीं लाते तो दो पार्टी हो गया।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार भूमिका राय से। अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करने और जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित राज्यों में बांटे जाने के खिलाफ श्रीनगर में महिलाओं ने आज प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में हिस्सा लेने वाली पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की बेटी और बहन समेत करीब दर्जन भर महिला कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उत्तरी सीरिया में कुर्द बलों और तुर्की समर्थित लड़ाकों के बीच संघर्ष गहरा गया है। अजरबैजान की यात्रा के दौरान तुर्की के विदेश मंत्री मेवतुल कैवुसोग्लू ने कहा कि सीरिया में कुर्द लड़ाकों के खिलाफ अभियान छेड़ने के अलावा तुर्की के पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि अमेरिका ने अपना वादा पूरा नहीं किया।
तुर्की की फौजों के हमलों की जद।
डायलॉग, वोटिंग एंड फ्रीडम आर
देखिए आतंकवादी YPG कुर्द लड़ाके किस तरह से हमले कर रहे हैं। अगर आज हम ये संघर्ष नहीं करते तो कल हमें और मुश्किल आती। अगर आप तुर्की से कुछ करवाना चाहते हैं तो आपको ईमानदार रहना होगा और वादे निभाने होंगे। अमेरिका ने इस क्षेत्र में सेफ जोन बनाने का वादा पूरा नहीं किया, इसलिए हमें अभियान चलाना पड़ा। ये थे तुर्की के विदेश मंत्री के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने चेताया है कि तूफान हगिबिस के कारण मची तबाही के आर्थिक दुष्प्रभाव लंबे समय तक देखने को मिल सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार इस तूफान को भीषण प्राकृतिक आपदा घोषित करने जा रही है ताकि पुनर्निर्माण के लिए सरकारी रियायतें बढ़ाई जा सकें। शनिवार को आए इस तूफान के चलते अभी तक 66 लोगों की मौत हो गई है। कीचड़ और मलबे के कारण राहत एवं बचाव कर्मियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कैटलोनिया के प्रांतीय नेता किम तोर्रा ने कहा है कि उनकी सरकार कैटलिन लोगों के आत्मनिर्माण के लिए अधिकार के साथ खड़ी रहेगी। 2017 में आज़ादी का अभियान चलाने वाले 9 कैटलन अलगाववादियों को स्पेन के सुप्रीम कोर्ट की ओर से जेल की सज़ा सुनाए जाने के एक दिन बाद उन्होंने कहा,
डायलॉग, वोटिंग एंड फ्रीडम आर ऑलवेज द पाथ टू रिसॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स।
संघर्ष को हल करने का रास्ता संवाद, मतदान और आज़ादी से निकलता है, न कि धमकियों, जेल और सजाओं से। लोगों की अपेक्षाओं को अपराध की श्रेणी में डाल देना तानाशाही की निशानी है। स्पेन सरकार का संवाद शुरू न करना और राजनीतिक संघर्ष का लोकतांत्रिक हल न निकालना हमें अपने लिए स्वतंत्र राष्ट्र बनाने से नहीं रोक पाएगा। कैटलोनिया के प्रांतीय नेता किम तोर्रा के शब्द। नाइजीरिया की पुलिस ने एक निजी इस्लामी स्कूल पर छापा मारा है जहां करीब 70 पुरुषों और लड़कों को बेड़ियों में रखा गया था। उत्तर पश्चिमी राज्य कत्सीना से छुड़ाए गए इन लोगों का कहना है कि उन्हें पीटा जाता था और उनका यौन शोषण भी किया जाता था। स्कूल के रजिस्टर के अनुसार 300 से अधिक लोगों को इन हालात में हिरासत में रखा गया था। पुलिस के प्रवक्ता ने BBC को बताया कि ये लोग किसी तरह बेड़ियों के साथ ही भाग निकले थे। सुधार गृह के तौर पर काम कर रहे इस स्कूल को बंद करके मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। यूरोपीय संघ के मुख्य ब्रेग्जिट वार्ताकार माइकल बर्नियर ने यूरोपीय संघ के मंत्रियों को बताया है कि इस हफ्ते होने जा रहे यूरोपीय नेताओं के सम्मेलन में ही समझौता हो सकता है, मगर उन्होंने बताया कि इसके लिए ब्रिटेन की ओर से ही लिखित रूप कानूनी सूचना मिलनी चाहिए। बर्नियर ने कहा कि ऐसा नहीं हुआ तो वह सम्मेलन के बाद बातचीत की सिफारिश कर सकते हैं। ब्रिटानी सरकार ने हाल ही में दोहराया है कि वह 31 अक्टूबर तक ब्रिटेन को यूरोपीय संघ से बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है। BBC समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। آرٹیکل 370 کو ختم کرنے اور جموں کشمیر کو دو کیندر شاست راج میں وبھاجت کرنے کے سرکار کے فیصلے کے خلاف شری نگر میں مہیلاؤں نے پردرشن کیا ہے۔ پردرشن کر رہی صوبے کے پور مکھیہ منتری فاروق عبداللہ کی بیٹی اور بہن سمیت قریب درجن بھر مہیلا کاریکرتاؤں کو پولیس نے حراست میں لیا۔ عبداللہ کی بہن سریا اور ان کی بیٹی صافیہ مہیلا کاریکرتاؤں کے سموہ کو لیڈ کر رہی تھی۔ بلیک آرم بینڈ پہنے اور تختیاں پکڑے ہوئے مہیلا پردرشنکاریوں کو پولیس کرمیوں دوارا اکٹھا ہونے کی انومتی نہیں دی گئی تھی۔ شری نگر سے ماجد جہانگیر کی رپورٹ۔
یہ آوازیں ان مہیلاؤں کی ہیں جو سری نگر کے لال چوک میں منگلوار کو ہاتھوں میں پلے کارڈ لیے انوچھید 370 کو ہٹائے جانے کے خلاف پردرشن کرنے کی کوشش کر رہی تھیں، جس دوران پولیس نے ان مہیلاؤں کے پردرشن کو ناکام بنا دیا اور مہیلاؤں کو پولیس نے حراست میں لیا۔ میڈیا کے ساتھ ان مہیلاؤں نے بات چیت کے دوران بتایا،
پیسفلی بیٹھ گئے، عورتیں کچھ جمع ہو گئی، ہم کہتے ہیں جوان کہاں ہیں، ہمیں ذرا بتا دیجیے۔
ہم آپ کو کہنا چاہتے ہیں، آپ نے ہم کو ہیومیلیٹ کیا، آپ نے ہم، وی آر ہرٹ، وی آر پینفل، ڈسگسٹڈ، ہم کو یہ کوپ کیا ہے، شب خونی بولتے ہیں، رات کو صبح بولا نہیں، آپ باہر نہیں جا سکتے، آپ کچھ نہیں کر سکتے، کیوں بھائی؟ ہم نے قصور کیا ہے؟ کم از کم ہم سے پوچھا تو جاتا۔ آپ باہر بول رہے ہیں کہ خوش ہیں کشمیری، خوش ہیں کشمیری خواتین، ہم خوش نہیں ہیں، جو آپ نے ہمارے ساتھ کیا اس سے ہم خوش نہیں ہیں۔ ہم کو پوچھیے کیوں خوش نہیں ہیں، ہمارے ساتھ بحث کیجیے، ایسی کے ساتھ تو بات کریے۔
پردرشن کرنے والوں میں پورو مکھیہ منتری اور نیشنل کانفرنس کے ادھیکش ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی بہن اور ان کی بیٹی کے علاوہ کشمیر یونیورسٹی کی میڈیا کنسلٹنٹ مسلم جان بھی شامل تھیں۔ میڈیا کو جاری ایک پریس بیان میں ان مہیلاؤں نے بتایا ہے کہ ہماری مانگ ہے کہ شہری اور گرامین علاقوں سے سینا کو ہٹایا جائے، اور ساتھ ہی انہوں نے 5 اگست کے بعد گرفتار کیے گئے لوگوں کو رہا کرنے کی بھی مانگ کی ہے۔ ادھر دکشنی کشمیر کے شوپیاں ضلع کے شرمال علاقے میں کل دیر رات ایک ٹرک ڈرائیور کی گولی مار کر ختیہ کر دی گئی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مارا گیا ڈرائیور راجستھان کا رہنے والا تھا، جس کی شناخت شریف خان کے روپ میں ہوئی ہے۔ پولیس نے اس گھٹنا کے لیے چرم پنتھیوں کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ پولیس نے بتایا ہے کہ ڈرائیور کی گھٹنا ستھل پر ہی موت ہو گئی تھی۔ پولیس نے ایک ستھانیہ اخبار کو بتایا ہے کہ حملہ کرنے والوں میں ایک پاکستانی چرم پنتھی بھی شامل تھا۔ ادھر آج 72ویں دن بھی کشمیر میں کاروباری ادارے بند رہے اور سڑکوں سے پبلک ٹرانسپورٹ غائب رہا، حالانکہ بڑی سنکھیا میں نجی گاڑیوں کی آواجاوی سڑکوں پر دیکھی گئی۔ غورطلب ہے کہ بیتے 5 اگست کو بھارت سرکار کی اور سے جموں کشمیر سے انوچھید 370 ہٹائے جانے کے بعد کشمیر میں تناؤ برقرار ہے۔ سرکار نے کل سوموار کو 70 دنوں کے بعد کشمیر گھاٹی میں پوسٹ پیڈ موبائل سیواؤں کو بحال کیا ہے، جبکہ پری پیڈ موبائل سیوائیں اور انٹرنیٹ 5 اگست سے بند ہیں۔ ماجد جہانگیر، بی بی سی، سری نگر۔
این سی پی کے ورشٹھ نیتا پرفل پٹیل کو پرورتن نردیشالے نے طلب کیا ہے۔ ان پر بھارت کے وانچت اپرادھی داؤد ابراہیم کے سہیوگی کے ساتھ پراپرٹی سودا کرنے کے آروپ ہیں۔ پرفل پٹیل نے سبھی آروپوں کو سرے سے خارج کیا ہے۔ سنیے دل نواز پاشا کی رپورٹ۔
پورو کیندری منتری اور راشٹروادی کانگریس پارٹی کے ورشٹھ نیتا پرفل پٹیل کے پریوار کی کمپنی اور داؤد ابراہیم کے سہیوگی اقبال مرچی کی پتنی کے بیچ سمپتی سودے کی جانچ کر رہے پرورتن ندیشالیہ نے اب پرفل پٹیل کو طلب کیا ہے۔ پرورتن ندیشالیہ نے پٹیل کو 18 اکتوبر کو پوچھ تاچھ کے لیے اپنے ممبئی دفتر بلایا ہے۔ یہ گھٹنا کرم ایسے وقت میں ہوا ہے جب مہاراشٹر میں چناوی سرگرمیاں چرم پر ہیں۔ کیندریہ گرہ منتری امیت شاہ نے بھی اس مدعے پر پرفل پٹیل کو گھیرا ہے۔ سماچار چینل انڈیا ٹوڈے سے بات چیت میں امیت شاہ نے دعویٰ کیا ہے کہ سمپتی سودے کے سمے اقبال مرچی کے خلاف ریڈ کارنر نوٹس جاری تھا۔ امیت شاہ نے پرفل پٹیل سے سوال کرتے ہوئے کہا کہ پٹیل کو بتا دینا چاہیے کہ ان کا اقبال مرچی کی پتنی کے ساتھ کیا سودا ہوا تھا۔ وہیں آج شام ایک پریس کانفرنس میں پرفل پٹیل نے سبھی آروپوں کو خارج کرتے ہوئے کہا،
یہ جو ویکتی کی بات ہو رہی ہے اور ایک وواد کھڑا کیا جا رہا ہے کہ بھئی غلط ویکتیوں کے ساتھ یہ ہمارا یہ کمپنی نے کوئی ویوہار کیا ہے، تو ایسی بالکل بات نہیں ہے۔ یہ جو بھی ویوہار ہوا ہے 1990 میں دوسرے ویکتی کے مادھیم سے انہوں نے یہ جگہ کو خریدا، اور کیول جب بلڈنگ نئی بن رہی تھی تو اس جگہ کے اویج میں दूसरी जगह उतनी ही 14,000 स्क्वायर फीट की मात्रा उनको दी गई, इतनी ही इसकी संक्षिप्त इसकी बैकग्राउंड है।
पटेल ने यह भी दावा किया है कि उनके परिवार की कंपनी मिलेनियम डेवलपर्स के इकबाल मिर्ची की पत्नी हाजरा इकबाल मेमन से किसी तरह का कोई संपर्क नहीं है। उन्होंने कहा,
मिलेनियम डेवलपर्स जो कंपनी है वो पटेल फैमिली की है, उसने कभी एक रुपए का शेयर किसी भी तरह से हाजरा इकबाल मेमन का कभी नहीं रहा है।
प्रफुल्ल पटेल मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्री थे। उन पर ये आरोप राज्य में विधानसभा चुनावों के दौरान लगे हैं। बीजेपी पटेल की पार्टी एनसीपी पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के आरोप लगा रही है। पटेल ने आरोपों को राजनीतिक साजिश बताते हुए कहा है कि हाजरा की संपत्ति के बारे में आयकर विभाग को पहले से ही जानकारी थी।
तो इनकम टैक्स को तो मालूम है 2005 से कि ये जगह ये हाजरा इकबाल मेमन की है, तो आज 2019 तक इनकम टैक्स ने इसके बारे में क्या कार्रवाई की।
सवाल यही है कि इस संपत्ति समझौते का पिटारा अब क्यों खुल रहा है। दिलनवाज पाशा, बीबीसी दिल्ली।
खबर सच है
अगर बीबीसी पर है।
पश्चिम बंगाल पुलिस ने मुर्शिदाबाद के चर्चित मर्डर केस की गुत्थी सुलझाने का दावा किया है। पुलिस ने इस मामले में एक युवक को गिरफ्तार करने के बाद कहा है कि शिक्षक बंधु प्रकाश पाल, उनकी गर्भवती पत्नी और बेटे की हत्या पैसे के लेन देन में की गई थी। पुलिस का दावा है कि गिरफ्तार युवक ने अपना अपराध कबूल कर लिया है। रवि प्रकाश की रिपोर्ट।
लोकटा जे विक्टिम ने केस का जे विक्टिम आछे और कंप्लीटली इनटू बिजनेस एक्टिविटीज।
यह आवाज मुर्शिदाबाद के एसपी मुकेश कुमार की थी। वे बता रहे थे कि जियागंज के चर्चित तेरे हत्याकांड की वजह व्यक्तिगत थी, न कि राजनीतिक या धार्मिक। उन्होंने बताया कि इस मामले का कथित आरोपी उत्पल बेहरा मृतक बंधु प्रकाश पाल के गांव बाडला का ही रहने वाला था। उसने एक बीमा के लिए बंधु प्रकाश पाल को रुपए दिए थे, लेकिन वह पैसा जमा नहीं कराया गया। इसके बाद उन्होंने बंधु प्रकाश पाल से पैसे की मांग की, तब बंधु प्रकाश ने कथित तौर पर उनसे बदतमीजी की थी। तब उन्होंने बंधु प्रकाश पाल को मारने की योजना बनाई। 3 दिनों तक रेकी करने के बाद वह विजयादशमी के दिन बंधु प्रकाश के जियागंज स्थित घर पर पहुंचा और बंधु प्रकाश उनकी 8 माह की गर्भवती पत्नी ब्यूटी पाल और 7 साल के बेटे आर्य की बेरहमी से हत्या कर दी। एसपी मुकेश कुमार ने बताया कि उत्पल बेहरा ने अपना अपराध कबूल कर लिया है और हथियार को भी बरामद कर लिया गया है, जिससे 3 लोगों का कत्ल किया गया था।
इनिशियली केसे हमरा अनेक किछु पाछिलाम कि अनेक किछु पॉसिबिलिटीज होते पारे, सब पॉसिबिलिटीज के हमरा एग्जामिन करे हमरा।
पुलिस के इस खुलासे के बाद शाहपुर बडला गांव के लोग सकते में हैं। मृतक बंधु प्रकाश की ममेरी बहन बंधु स्मृति घोष ने बीबीसी से कहा कि उन्हें अब न्याय की उम्मीद है, आरोपी को कड़ी सजा मिलनी चाहिए।
सर हमें तो मैंने पहले तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि वो हो सकता है। हाँ, पुलिस कह रहा है कि वो मैंने मान भी चुकी है कि वही ने उसी ने किया है। हम सोच भी नहीं सकते वो लड़का ऐसे कर दिया, बहुत कष्ट हो रहा है।
हालांकि भारतीय जनता पार्टी के जियागंज मंडल अध्यक्ष प्रताप हालदार पुलिस की इस थ्योरी पर संदेह व्यक्त करते हैं। उन्होंने बीबीसी से कहा कि इस मामले की सीबीआई जांच कराई जानी चाहिए।
बीजेपी अब सीबीआई की मांग करेगी क्योंकि जो जिसको पकड़ा गया है वो एक आदमी को पकड़ा गया है, एक आदमी कैसे 3 आदमी को मार सकता है।
पुलिस ने आज सुबह बहरामपुर में आयोजित अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मृत बंधु प्रकाश पाल शिक्षक होने के साथ ही कई तरह की फाइनेंशियल कंपनियों के साथ काम करते थे। वे वित्तीय संकट में थे क्योंकि उनके ऊपर कईयों का पैसा बकाया था। जियागंज में मृतक के घर के सामने रहने वाली वासना हालदार ने बीबीसी को बताया कि उनका परिवार इस मोहल्ले के लोगों से घुला मिला नहीं था, लेकिन उनके घर पर कुछ लोग आया जाया करते थे।
किसी दिन में 2 आते थे, किसी दिन 1 आते थे, वैसे जानते नहीं वो लोग को।
इनकी जो वाइफ थी इनसे आप लोग से घुली मिली नहीं थी?
नहीं नहीं, घुली मिली कोई किसी दिन बात भी नहीं किया। जैसे रोड पे जैसे जाते थे ना, जैसे आपका मुंह देखा मैं देखा ऐसे हंसते रहते थे, इतने गहरे संबंध नहीं था, गहरे संबंध नहीं था उसका।
इस बीच पश्चिम बंगाल पुलिस ने ट्वीट कर कहा है कि पुलिस और सीआईडी इस मामले की जांच करती रहेगी। हम यह भी पता लगाने की कोशिश करेंगे कि इस मामले में कोई और भी तो शामिल नहीं है। बहरहाल इस मर्डर मिस्ट्री का खुलासा होने के बाद पश्चिम बंगाल सरकार पर उठाए जा रहे सवालों पर थोड़ा विराम लगेगा। इससे पहले भाजपा के नेताओं ने दावा किया था कि बंधु प्रकाश पाल की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई थी क्योंकि उनका संबंध आरएसएस से था। इसके बाद से यह मामला सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा था। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार और राज्यपाल के बीच भी इस मुद्दे को लेकर डिफरेंस की बातें सार्वजनिक हुई थी। रवि प्रकाश, बीबीसी के लिए मुर्शिदाबाद में।
ये बीबीसी है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फजल के साथ। उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस विभाग में सहयोगी के तौर पर सेवाएं दे रहे 25,000 जवानों की सेवा समाप्त करने का आदेश जारी कर दिया है। हालांकि आदेश में इसकी वजह नहीं बताई गई है, लेकिन इसके पीछे बजट की कमी की बात सामने आ रही है। अभी कुछ महीने पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने होमगार्ड के जवानों को पुलिस के सिपाही के बराबर वेतन और भत्ते देने का निर्देश दिया था। पूरी जानकारी के साथ समीर आत्मज मिश्र।
उत्तर प्रदेश सरकार अयोध्या में भले ही करोड़ों रुपए खर्च करके इसी महीने दीपोत्सव कार्यक्रम करने जा रही हो, लेकिन राज्य के 25,000 होमगार्ड जवानों की दिवाली से पहले ही अंधेरा छा गया है। सरकार ने एक आदेश जारी करके इन जवानों की सेवा समाप्त करने का फैसला किया है। सरकार ने इसके पीछे कोई वजह नहीं बताई है। पुलिस मुख्यालय में अपर पुलिस महानिदेशक बीपी जोगदंड ने बीबीसी को बताया कि ऐसा अक्सर होता रहता है।
आदेश जारी हुआ है, उनकी सेवाएं समाप्त करने का आदेश जारी हुआ है। किस वजह से? तो शासन का निर्णय है, शासन बता पाएगा किस वजह से हुआ है। इट्स अ वॉलंटरी फोर्स, ये दिस इज अ यूजुअल थिंग, जरूरत होती है लेते हैं, जब जरूरत नहीं होती लौटाते हैं, एज सिंपल एज दैट।
इसके पहले भी अभी हाल फिलहाल में भी कुछ हटाए गए हैं या अभी ये?
वो सदियों से हो रहा है यही। अभी चुनाव, लोकसभा चुनाव में आए चले गए वापस, मेले में आए माघ मेले में, कुंभ मेले में चले गए वापस, माघ मेले में लेते हैं वापस भेज देते हैं।
राज्य सरकार के एक झटके में ही 25,000 होमगार्ड जवान तो बेरोजगार हो ही गए हैं। आने वाले दिनों में कई त्योहारों को देखते हुए इनकी सेवाएं समाप्त करने का समय भी सवालों के घेरे में है। सरकार के आदेश के मुताबिक इसी साल अप्रैल महीने से जिलों में पुलिस विभाग में सहयोगी की भूमिका निभा रहे होमगार्ड के जवानों के लिए यह आदेश जारी हुआ है। उत्तर प्रदेश में होमगार्ड के जवान कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस के सहयोगी बनते हैं और थानों से लेकर ट्रैफिक चौराहों तक अपनी ड्यूटी निभाते हैं। इसके अलावा अधिकारियों के साथ उनके अंगरक्षक के तौर पर भी इनकी सेवाएं ली जाती हैं। अचानक इन जवानों को हटाने के पीछे क्या वजह है, इस बारे में राज्य सरकार के गृह विभाग या फिर पुलिस विभाग का कोई भी अधिकारी बताने को तैयार नहीं है। लेकिन माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने होमगार्ड के जवानों को भी पुलिस के जवानों की तरह 500 रुपए की बजाय 672 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मानदेय देने का जो निर्देश दिया था, वो राज्य के करीब 1,00,000 जवानों को देना सरकार पर भारी पड़ रहा था। उत्तर प्रदेश में पुलिस महानिदेशक रह चुके रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी एके जैन कहते हैं,
बजट के बाद आया है ये ऑर्डर, इसके लिए प्रोविजंस करने होंगे। मेरे ख्याल से अगले फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट इस पे विचार करेगी, या जब बजट का सप्लीमेंट्री सेशन चलेगा, सप्लीमेंट्रीज आएंगी, तब हो सकता है उसमें कोई प्राविधान किया जाए। अभी जितना बजट है, जितना पहले से प्रावधानित है, उसी के तहत होमगार्ड्स को रख सकते हैं, उससे एक्सेस में नहीं रख सकते हैं। तो ये जो निकालने का एक फरमान जारी हुआ है, ये उसी के तहत है।
सरकार ने आदेश भले ही अब जारी किया है, लेकिन इसका फैसला करीब 1.5 महीने पहले ही मुख्य सचिव की अध्यक्षता में लिया जा चुका था। 25,000 इन जवानों के सामने न सिर्फ रोजी रोटी का संकट आ गया है, बल्कि सालों से यहाँ काम करने के चलते किसी दूसरी जगह कोई काम मिलने का भी संकट है। लखनऊ में तैनात होमगार्ड के एक जवान से हमने बात की, जो पिछले 8 साल से विभाग में सेवा दे रहे हैं और सरकार के इस आदेश से उनकी सेवा भी समाप्त हो चुकी है।
120 लोगों को आज ये आदेश जारी किया गया है कि आप लोग आज से आप लोगों की ड्यूटी समाप्त है। हमको लोगों को तो यही बताया गया है कि सर विभाग में बजट नहीं है, बजट ना होने की वजह से ये ड्यूटियां कम की गई है। अब सरकार की क्या मंशा है ये तो सरकार ही जाने। कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी दिन आएगा, देखना पड़ेगा, लेकिन इस बार जो है आदेश ऐसा जारी हुआ सर। 25,000 लोगों को तो निकाला ही, इससे पहले भी सर 16,519 लोगों को भी ड्यूटी समाप्त की गई है, और ये बताया गया था कि 25,000 ड्यूटी समाप्त नहीं की जाएगी, लेकिन एकाएक आदेश जारी किया गया कि 25,000 ड्यूटी और भी कम।
उत्तर प्रदेश में होमगार्ड के कुल स्वीकृत पद 1,18,000 हैं, जिसमें से खाली पदों की संख्या 19,000 है। 25,000 जवानों की सेवा समाप्त होने के बाद उन सेवाओं पर भी असर पड़ेगा जहाँ इन जवानों की सेवाएँ नियमित रूप से ली जाती थी। समीर आत्मज मिश्र, बीबीसी लखनऊ।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
अमेरिका के ट्रंप प्रशासन द्वारा तुर्की पर प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद तुर्की अभी भी कुर्दों पर हमले जारी रखे हुए है। अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप के डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंदी तुर्की पर प्रतिबंधों को नाकाफी करार दे रहे हैं। अब डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन सांसद मिलकर अमरीकी कांग्रेस और सीनेट में इस सिलसिले में प्रस्ताव लाने की भी बात कर रहे हैं। न्यूयॉर्क से सलीम रिजवी की रिपोर्ट।
तुर्की की फौजों के हमलों की जद में उत्तरी सीरिया से आ रही खबरों के अनुसार अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा तुर्की पर प्रतिबंध के ऐलान के बावजूद तुर्की की फौजें अपना सैन्य अभियान जारी रखे हुए हैं। रॉयटर्स न्यूज एजेंसी के अनुसार तुर्की की फौजें अब मानबीज शहर की ओर बढ़ रही हैं। सोमवार को ट्रंप ने एक बयान जारी करके कहा था कि वो तुर्की पर आर्थिक प्रतिबंध लगा रहे हैं। उन्होंने बयान में लिखा था कि तुर्की के सैन्य अभियान से आम नागरिकों को खतरा है और उससे इलाके में अस्थिरता और अशांति बढ़ेगी। ट्रंप ने कहा कि तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान से मैंने साफ तौर पर कहा कि तुर्की की इस कार्रवाई से आम लोगों की जिंदगी बेहद मुश्किल होने और ऐसे माहौल में संभावित युद्ध अपराधों का भी खतरा है। ट्रंप ने यह भी लिखा कि अगर तुर्की के नेता इस रास्ते पर चलते रहेंगे तो वो तुर्की की अर्थव्यवस्था को तबाह करने के लिए तैयार हैं। ट्रंप ने इससे पहले ये ऐलान किया था कि सीरिया से अमरीकी फौजें वापस हो जाएंगी, जिसके बाद तुर्की ने उत्तरी पूर्व सीरियाई इलाके में कुर्दों पर हमले करने शुरू कर दिए थे। तुर्की का कहना है कि वो कुर्द आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है और सीरिया में उन सीरियाई लोगों के रहने के लिए सुरक्षित इलाका बनाना चाहता है जो तुर्की में पनाह लिए हुए हैं। इस इलाके में इस्लामिक स्टेट या आइसिस के आतंकवादियों के भी जेलों से भागने की खबरें आ रही हैं। ट्रंप द्वारा तुर्की के कुछ मंत्री और मंत्रालयों पर प्रतिबंध लगाए जाने का ऐलान किया गया है। कुछ रिपब्लिकन सेनेटर्स ने इस सिलसिले में ट्रंप की हिमायत का ऐलान भी किया है। सेनेटर लिंजी ग्रहम ने तुर्की पर प्रतिबंध लगाए जाने के राष्ट्रपति ट्रंप के फैसले का भरपूर समर्थन का वादा किया है। उन्होंने एक बयान जारी कर कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप की टीम के पास इस सिलसिले में एक योजना है और मैं उसका भरपूर समर्थन करूंगा। मैं उन्हें समय दूंगा जिससे हमारे लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। लेकिन अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसदों ने ट्रंप के प्रतिबंध को नाकाफी बताया है। अमेरिकी कांग्रेस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने एक बयान जारी कर कहा है कि ये प्रतिबंध देर से आए हैं और नाकाफी हैं और इससे सीरिया के कुर्दों की सुरक्षा नहीं हो पाएगी। पेलोसी ने कहा कि ट्रंप ने आइसिस के खिलाफ लड़ाई में अमरीका के साथी कुर्दों के साथ धोखा किया है। नैन्सी पेलोसी और सेनेटर लिंजी ग्रहम ने साथ मिलकर दोनों सदनों में तुर्की पर कड़े प्रतिबंध लागू करने के सिलसिले में एक प्रस्ताव पर भी काम करने की बात कही है। इस प्रस्ताव में ट्रंप के सीरिया से अमरीकी फौजें वापस बुलाने के फैसले को वापस करने की भी कोशिश की जाएगी। उधर अमरीकी रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने एक बयान में कहा है कि अमरीका के कुछ फौजी सीरिया में अल्तान्फ नामी सैनिक अड्डे में रुक जाएंगे जिससे बचे कुचे आइसिस के आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। अमरीकी रक्षा मंत्री मार्क एस्पर का कहना है कि तुर्की की गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई से इलाके में लड़ाई फैल सकती है। सलीम रिजवी, न्यूयॉर्क।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
बीबीसी हिंदी।
महाराष्ट्र के आदिवासी क्षेत्रों में अंदर अंदर एक आग सुलग रही है जिससे समय रहते निपटा नहीं गया तो ऐसी आशंकाएं हैं कि स्थिति बेकाबू हो सकती है। धर्म परिवर्तन कर आदिवासी ईसाई बनते हैं और फिर घर वापसी के बाद हिंदू। ये सिलसिला बदस्तूर जारी है और अब सुदूर अंचलों के कई गांवों में इसकी वजह से तनाव फैल रहा है। प्रदेश के सुदूर जंगली इलाकों से बीबीसी संवाददाता सलमान रवि की ये खास रिपोर्ट।
महाराष्ट्र के गढ़चिरौली के घने जंगलों की श्रृंखला, यहाँ पर मूल वासी जो रहते हैं वो हैं आदिवासी, और ये आदिवासी इन दिनों पिस रहे हैं एक ऐसी लड़ाई में जहाँ पर एक तरफ सुरक्षा बल के जवान हैं तो दूसरी तरफ माओवादी छापामार। लेकिन अंदर अंदर एक और युद्ध चल रहा है जिससे ये आदिवासी फिर से पिस रहे हैं, और वो युद्ध है धर्म का।
महाराज भगवान जब भगवान
महाराष्ट्र के सबसे पिछड़े हुए इलाकों में से एक गढ़चिरौली के सुदूर विजयपार गांव में तनाव है। यहां के रहने वाले कुछ आदिवासियों ने ईसाई धर्म अपना लिया है। गांव के लोगों ने इन ईसाइयों का बहिष्कार तो किया ही, साथ ही इन पर सामूहिक अर्थ दंड भी लगा दिया है। दुलाराम पहाड़ सिंह कुमरे इस गांव के सचिव हैं।
तो दंड तो भरना पड़ेगा, उतना दिन हमारा देव को ऐसा किया तो उसका नष्ट कर दिया तो उसका दंड देना पड़ेगा। तो हम उसको बोलते हैं, उनको क्रिश्चियन वाले को, हमारा समाज जो पहले से आदिवासी चल रहा है वैसा हम करते चलो आगे, हमारा जो पहले से चल रहा है आदिवासी समाज का वो नियम से तुम चलो, नहीं करके हम थोड़ा सा उनको अटाव कर दिए, हर तेल हर दिन नहीं लाते तो दो पार्टी हो गए।
महाराष्ट्र के आदिवासी बहुल इलाकों में धर्मांतरण और घर वापसी की खींचातानी जारी है। स्थानीय चर्च पर आरोप लग रहे हैं कि वह प्रलोभन देकर आदिवासियों का धर्मांतरण कर रही है।
बराबर जानकारी ना रख सकते
हैं। इन आरोपों को कोरची चर्च के पादरी आर जयपाल खारिज करते हैं।
किसी गांव में जाकर अपने विश्वासियों को, यानी कि जिस लोग ने मसीह को स्वीकार किए हैं, उनको कुछ प्रकार की दबाव डालते हैं, तुम लोग प्रभु यीशु को नहीं छोड़ेंगे तो गांव में नहीं रखेंगे, गांव से अलग कर देंगे और 10,000 रुपये दंड है, ऐसी प्रकार की दबाव डालते हैं। इसी से लोग डर के मारे अपने विश्वास को जाहिर नहीं कर पाते, दब जाते हैं। हम तो किसी के फोर्स कर किसी को धर्म परिवर्तन नहीं करते हैं और हम वैसे करवाना भी नहीं चाहते। हमारा बाइबल भी वैसे नहीं बोलता, हमारा बाइबल भी ये बोलता तुम जाकर ये सुसमाचार को प्रचार करो, क्या क्योंकि ये सुसमाचार प्रभु यीशु के लोही द्वारा उद्धार मिलता है, आनंद जीवन मिलता, शांति मिलता, ये सुसमाचार प्रचार करने के लिए बोला है, वो प्रचार करते हैं।
लेकिन संघ परिवार धर्मांतरण का विरोध कर रहा है। संघ के प्रचारकों का कहना है कि ईसाई मिशनरी जंगल के इलाकों के आदिवासियों की गरीबी और आर्थिक तंगी का फायदा उठा रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के वामन राव फाय कहते हैं,
ये धर्मांतरण होने का कारण एक है, जो यहाँ आदिवासी दलित लोग पीड़ित लोग है, उनके पास पैसा कम है, बेकारी बढ़ गई है, अशिक्षता बढ़ गई, सुशिक्षित नहीं है, इनकी वजह से वो बाहर के लोग आते हैं प्रचारक, और पैसा दे के उनको सीधा पानी दे के धान्य वाटप करके महीने के महीने उनको पगार जैसा पैसा दे के उनको धर्मांतरित करते हैं और अपने मिशनरी बनाने का काम करते हैं। मगर क्रिश्चियन मिशनरी जो काम कर रही वो चुपचाप कर रही, ओपन नहीं कर रही, ये मालूम भी नहीं होता कहाँ जाते कैसे जाते, इंटरव्यू में कैसे जाते, ये कोई समझ में नहीं आता है। मगर कुछ कुछ लोग हो गए है, वो बोलते हैं हम क्रिश्चियन हो गए, ऐसे क्वचित है, ज़्यादा नहीं है।
ईसाई मिशनरियों को रोकने के लिए संघ ने भी अपनी रणनीति बनाई है। वो शिक्षा के माध्यम से धर्मांतरण को रोकने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसी के तहत आदिवासी बहुल इलाकों में अब संघ अपनी शाखाएं और स्कूल खोल रहा है।
तो वो एफिडेविट तहसील में ही होता है ना।
धर्मांतरण और घर वापसी की खींचातानी अब पुलिस के पास भी पहुंचने लगी है। सिर्फ विजयपुर ही नहीं, जंगल के विभिन्न सुदूर गांवों से आ रही शिकायतों पर पुलिस ने भी संज्ञान लेना शुरू कर दिया है, ताकि कोई सौहार्द बिगाड़ न सके। कोरची थाने के अधिकारी विनोद गोडबोले कहते हैं,
उनका कहना है कि ये हमें डराते हैं कि आप लोगों ने कुछ क्रिश्चियन कम्युनिटी का धर्म का आपने आचरण किया है, तो इसलिए आप हमारे समाज में नहीं हो, इस प्रकार की शिकायत की है। एक्चुअली देखा जाए वो वैसा उस प्रकार का नहीं है, उसमें जो परंपरा है दोनों की विपरीत है एक दूसरे से, तो इसलिए वो एक दूसरे के प्रोग्राम में शरीक नहीं होते हैं। और जो ग्राम सभा होती है उस ग्राम सभा में जाने के लिए विरोध होता है एक दूसरे की तरफ से, क्योंकि उनकी परंपराएं अलग है, तो इस कारण जो ग्राम सभा में ठहराव वगैरह लिए जाते हैं वो रिपोर्टर और उनके बाकी जो दोस्त वगैरह हैं उन तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, और वो कम्युनिकेशन गैप है, क्योंकि ये दोनों की आपस में बनती नहीं है, इसलिए वो कम्युनिकेशन गैप के कारण ये तकलीफें सामने आई है, क्रिएट हुई है।
आदिवासियों को अपनी संस्कृति पर नाज है, उनके रीति रिवाज बिल्कुल अलग हैं, इसलिए ईसाई बनने पर उन्हें समाज के अनुष्ठानों से अलग रहना पड़ता है। लेकिन धर्म परिवर्तन करने वाले आदिवासियों का कहना है कि उन्होंने सिर्फ अपना धर्म छोड़ा है, संस्कृति नहीं। सलमान रावी, बीबीसी गढ़चिरौली।
और अब सभा के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करने और जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित राज्य में बांटे जाने के खिलाफ श्रीनगर में महिलाओं ने प्रदर्शन किया। उत्तरी सीरिया में कुर्द बलों और तुर्की समर्थित लड़ाकों के बीच संघर्ष गहरा गया है। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने चेताया है कि तूफान हगिबिस के कारण मची तबाही के आर्थिक दुष्प्रभाव लंबे समय तक देखने को मिल सकते हैं। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो संभाल रहे थे राजेश चौहान, रेहान फजल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।